नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। हो यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। हो यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। हो यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। ओ यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। जब तेरी शरण में आया, तुझको मन से है अपनाया। मैं जब तेरी शरण में आया, तुझको मन से है अपनाया। तू ही बचाए मेरे प्राण, तू ही बचाए यीशु नाम। भजल तू मन रे, उसका सुमिरन तू कर ले रे। यीशु नाम भजल तू मन रे, उसका सुमिरन तू कर ले। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। ओ यीशु 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 नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। राजा हो या हो वो भिखारी, पापी हो या हो वो पुजारी, राजा हो या
हो वो भिखारी, पापी हो या हो वो पुजारी, माफी का देता है वो दान, माफी का देता है वो दान। यीशु नाम भजले तुमन रे, उसका सुमिरन तू कर ले रे। यीशु नाम भजले तुमन रे, उसका सुमिरन तू कर ले। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान, सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। हो यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, 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 हो यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा।
प्रिय मित्र, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा नमस्कार मिले। मैं फिर से आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब आज के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। प्रिय श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में हमने अध्ययन किया था कि किस तरह ओलों की विपत्ति ने सारे मिस्र को नष्ट कर दिया, फिर भी फिरौन का हृदय कठोर बना रहा। तब वह फिर से एक समझौता करना चाहता है। तो आइए हम इसके आगे से अपने अध्ययन को आरंभ करें और देखें कि फिरौन क्या कहता है। हम निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय और उसके 11 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे, और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। मित्रों, फिरौन ने मूसा से कहा कि पुरुष लोग निर्जन प्रदेश में जाकर बलिदान चढ़ा सकते हैं, परंतु उन्हें बच्चों के बिना ही जाना होगा। निसंदेह फिरौन को शंका हो गया था कि यदि इसराइली 3 दिन की यात्रा करके जंगल में जाएंगे तो वे आगे चलते रहेंगे और वापस नहीं लौटेंगे। वह इस बात को रोकना चाहता था, और वह जानता था कि यदि वह बच्चों को पीछे रखता है तो पुरुष लोग वापस आएंगे। ठीक जैसा कि फिरौन ने मूसा को समझौते का प्रलोभन दिया और परखा, वैसे ही आज परमेश्वर की संतान भी समझौते से बहकाए जाते हैं। पूरे देश में इस छोर से उस छोर तक बच्चों को एक ऐसी शिक्षण प्रणाली में बढ़ाया जा रहा है जो कि पूरी तरह से मसीहत की शिक्षा के विपरीत है। परमेश्वर की संतान को बताया जाता है कि उसे संसार में आगे बढ़ना और सीखना चाहिए, जितना हो सके उतना पैसा कमाना चाहिए और संसार में शामिल होना चाहिए। डॉक्टर मैगी 30 साल से भी अधिक समय से पास्टर रहे हैं, अर्थात प्रभु की सेवा करते रहे हैं। वे बताते हैं कि मैंने बार बार देखा है कि मसीही अभिभावक अपने बच्चों के लिए उत्तम बातें चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा मिले। वे चाहते हैं कि बच्चे सफल हों और धनवान बने। वे एक के बाद एक गिर गए और प्रभु से दूर हो गए। चर्च के ऐसे कई सदस्य हैं जिन्होंने संसार की चकाचौंध में अपने बच्चों को खो दिया। अपने बच्चों के लिए संसार के उत्तम वस्तु की चाह अति सूक्ष्म प्रलोभन है जो मसीह अभिभावकों के सामने हमेशा आता है। मेरे प्रिय मित्रों, आप क्या उम्मीद करते हैं? जब आप अपने बच्चों को इन सांसारिक संस्थानों में भेजते हैं, वे पूर्ण रूप से फिरे हुए दिमाग के साथ घर वापस आते हैं। तब आप ऐसा क्यों कहते हैं, हाय, वह ऐसा कैसे हो सकता है या कैसे कर सकता है, जबकि वह एक मसीही परिवार में पला बढ़ा था। मित्रों, समस्या यह है कि वह वास्तव में एक मसीही परिवार में बढ़ाया नहीं गया। बहुत से जवान लोगों के अभिभावक प्यारे मसीही जन हो सकते हैं, परंतु वास्तव में वे अपने बच्चों को मसीही नियमों और मान्यताओं की शिक्षा नहीं देते हैं। वे संसार में उनके आगे बढ़ने के लिए इतने उत्सुक और अभिलाषी होते हैं कि वे उन्हें खो देते हैं। मित्रों, मूसा और हारून फिरौन के समझौते को स्वीकार नहीं करते हैं, और यही बात उसे क्रुद्ध कर देती है। किंतु उसका क्रोध उस बात को पूरा नहीं करता है, क्योंकि एक और विपत्ति आरंभ होने पर थी। हम निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय उसके 12 पद से लेकर 15 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओले से बचा है सबको चट कर जाएं। और मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर उठाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और ना उनके पीछे ऐसी फिर आएंगी। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहां तक कि देश अंधेरा हो गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल निदान जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर लिया। यहां तक कि मिस्र देश भर में न तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और न खेत में अनाज रह गया। मित्रों, टिड्डियों के आक्रमण के इस न्याय में कई रोचक बातें प्रकाशित हुई है। ध्यान दीजिए कि वे दूसरी विपत्तियों की तरह चमत्कारिक रूप से प्रकट नहीं हुए थे। एक पूरी हवा ने उन्हें किसी दूसरे स्थान से, संभवतः एशिया के किसी स्थान से लाया था। टिड्डियां मुख्य रूप से एशियाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इस हवा ने उन्हें रेगिस्तान के इस विस्तृत फैलाव के ऊपर लाया, और वे थोड़े भूखे थे। जब वे नील नदी की हरी हरी घाटी में पहुंचे, उन्होंने वहां के पेड़ पौधों और वनस्पतियों और अनाजों को खाकर भूमि को पूर्ण रूप से नंगा कर दिया, अर्थात उजाड़ दिया। मित्रों, पवित्र शास्त्र में टिड्डियों का उपयोग न्याय के रूप में चित्रित किया गया है। टिड्डियों का आक्रमण संभवतः सबसे खराब वस्तुओं में से एक है जिसका सामना मनुष्य को करना पड़ा। योएल नबी भूतकाल में टिड्डियों के एक आक्रमण का वर्णन करता है जो कि इतिहास का एक विषय है। उसके बाद एक न्याय की भविष्यवाणी करता है जो अब भी मानव जाति के लिए भविष्य है। मित्रों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी एक महान टिड्डियों के आक्रमण का जिक्र करती है जो पृथ्वी पर आएगा। इन कीटों ने संभवतः मिस्र देश की भूमि को पहले आए किसी भी विपत्ति से कहीं अधिक प्रभावित किया था। हम आगे पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय उसके 16 पद में, जहां पर लिखा है, तब फिरौन ने फुर्ती से मूसा और हारून को बुलावा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है। मित्रों, यह पहली बार नहीं है कि फिरौन ने किसी प्रकार के पाप का अंगीकार किया है। तब हम आगे पढ़ते हैं 10 उसके 17 से 20 पद में लिखा हुआ है, इसलिए अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह केवल मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पछुआ बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया, और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी न रह गई। तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे उसने इसराइलियों को जाने न दिया। मित्रों, यहाँ पर मिस्रियों के साथ परमेश्वर के व्यवहार करने के ढंग में एक प्रणाली है और एक सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीका है जिसके अनुसार परमेश्वर विपत्तियों को भेज रहा है। पहले की विपत्तियां विभिन्न देवियों, देवताओं, मूर्तियों के विरोध में निर्दिष्ट की गई थी जिनसे देश ग्रस्त था, और अब परमेश्वर इस रीति से विपत्तियों को भेजना आरंभ कर रहा है जो लोगों पर और जीवित रहने के उनके संघर्षों पर अत्यधिक कठोर शारीरिक क्लेश से प्रभावित करता है। टिड्डियों की विपत्ति का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा था, और लोगों ने फिरौन को मनाने की कोशिश की कि जो हो रहा है वह बुरा है। ये बात फिरौन के थोड़े देर के पश्चाताप का कारण बनती है, किंतु जिस क्षण विपत्ति को हटा दिया गया उसी क्षण फिरौन अपना मन बदलता है और वापस अपना असली रूप में आ जाता है। परमेश्वर इसराइल की संतान को जाने देने के लिए उस पर दबाव डालने जा रहे हैं। मित्रों, आइए अब हम नवी विपत्ति को ध्यान में दें। नवी विपत्ति है अंधकार, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय और उसके 21 पद से 23 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इसराइलियों के घरों में उजियाला रहा। मित्रों, क्या आप कभी ऐसे स्थान में रहे हैं जहां आप अंधकार को महसूस कर सकें? डॉक्टर मैगी ने एक बार वास्तव में अंधकार को कार्ल्सवर्थ केमन में महसूस किया था। सालों पहले एक गुफा की यात्रा पर उन लोगों ने बत्ती को बुझा दिया और पूरे समूह ने हे सनातन के चट्टान का गाना गाया। यह बहुत ही प्रभावशाली था। डॉक्टर मेगी कहते हैं कि उस समूह ने फिर कभी इस गीत को नहीं गाया क्योंकि कुछ अविश्वासियों ने उनकी आलोचना की, परंतु उस गुफा में अंधकार का कल्पना महसूस किया जा सकता था। मैं कभी उस तरह के अंधकार में नहीं रहा, न तो पहले और न बाद में, और वह इसी प्रकार का अंधकार था जो पूरे मिस्र देश पर छाया था। यह न्याय सूर्य देवता रा के ऊपर था। मिस्र की भूमि में अंधकार दिन के समय में छा जाता है। प्रधान देव जिसकी वे आराधना करते थे उसके विरुद्ध परमेश्वर अंधकार के साथ चलता है। सूर्य चक्कर सबसे प्रचलित चिन्ह है जिसका उपयोग मिस्रियों ने किया। यह उनके संपूर्ण कला में शामिल था। यह सूर्य देवता रा का चिन्ह था। अंधकार की विपत्ति रा की उत्कृष्ट असहायपन को दर्शाती है। यह अंधकार परमेश्वर का एक चमत्कार था और यह फिरौन को चौथा समझौता करने के लिए प्रस्ताव रखता है। यह अंतिम समझौता है जिसे वह इसराइल की संतान को मिस्र देश से जाने देने की अनुमति देने से पहले करता है। हम आगे देखते हैं इसराइल पर प्रभु का स्वयं का अधिकार। हम निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय उसके 24 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मित्रों, आप सोचेंगे कि सिर्फ भेड़ बकरियां और गाय बैल को छोड़कर जाने का समझौता मूसा को इसराइलियों के लिए कर लेना चाहिए। फिरौन लंबे समय से मूसा के समक्ष रियायत का प्रस्ताव करते आया है और आप सोचेंगे कि इसमें उसकी सहमति होगी। एक बार फिर यहाँ पर आज के आधुनिक मसीहियों के लिए एक शिक्षा है। परमेश्वर ने इसराइल को मिस्र छोड़ने के लिए बाल बच्चे और पशुओं समेत बुलाया। बच्चों को मिस्र में उनके शिक्षण प्रणाली में बढ़ने के लिए नहीं छोड़ना था। यदि हम अपने बच्चों को संसार की बुद्धि में बढ़ाने की आशा करते हैं और उनसे आशा करते हैं कि वे अपनी सारी शक्ति सफल होने में लगा दें, तो हमें उनको संसार में खोने के लिए भी तैयार रखना चाहिए। एक लड़की की माँ ने मुझे बताया कि कैसे उसने अपने बेटे को ईश्वरहीन स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया और कैसे वह उन्नत होता रहा। उसने मुझे ये नहीं बताया कि उसके बेटे ने अपना विश्वास खो दिया है, हालांकि उसके पास था। उसके बेटे ने इस स्कूल से स्नातक तक की पढ़ाई की, उसे उच्च स्थान मिला था और मैंने उसका नाम कई बार अखबारों में देखा था। उसके बाद उसकी माँ अपनी आंखों में आंसू लिए मेरे पास ये बताने के लिए आई कि कैसे उसके बेटे ने हर उस चीज से मुंह मोड़ लिया जिसे वह पवित्र और ईश्वर की आराधना संबंधी बातें मानती थी। जी हाँ, यही वो रास्ता है जिस पर उसने उसे चलाना आरम्भ किया था। ये संसार बहुत धूर्त है। आज भी ऐसे बहुत से मसीही लोग हैं जो मिस्र की भूमि में अपने भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ देते हैं। दरअसल यहाँ पर मिस्र संसार का एक चित्र है। बहुत से मसीही लोग चर्च के क्रियाकलापों के प्रति विश्वास योग्य हैं। वे अपने पादरी की आर्थिक सहायता करते हैं, प्रभु के काम के लिए दान देते हैं, वगैरह वगैरह, परंतु वे मिस्र की भूमि में कारोबार करते हैं। वे अपने भेड़ बकरी और गाय बैल को मिस्र के सब चीजों से ऊपर रखते हैं। यदि उन्हें परमेश्वर की सेवा करने और अपने भेड़ बकरी और गाय बैल के लिए मिस्र की यात्रा करने के बीच चुनाव करना पड़े, तो आप जानते हैं कि किस दिशा में वे जाएंगे। मित्रों, यह बहुत मजेदार बात है कि बहुत से मसीह कहते हैं कि क्या आप जानते हैं, मैं रविवार को प्रभु की सेवा करता हूँ, परंतु सप्ताह भर मैं उदासीन व्यवसाय जगत में व्यस्त रहता हूँ। मित्रों, वे मिस्र की भूमि में अन्य व्यक्तियों की तरह जीते हैं। मसीह कहलाने वाले बहुत से लोग इतना अधिक सांसारिक लोगों की तरह जीते हैं कि उनमें फर्क करना बहुत ही मुश्किल होता है। डॉक्टर मेगी का मानना है कि कलीसिया के ऊपर उठाया जाना अधिकांश मसीहियों के दिलों को तोड़ देगा, क्योंकि यह संसार में उनके सारे निवेशों से उन्हें अलग कर देगा, उनके व्यापारियों से उन्हें अलग कर देगा। उन्हें अपनी तिजोरियां, बचत खाते, उनके शेयर, बॉन्ड और भूमि संपत्ति सब कुछ छोड़ना होगा। यही सब है जिसमें उन्होंने अपना समय और हृदय दिया, और यह उनके लिए उनके पीछे छोड़ने में महान दुख का कारण बनेगा। मित्रों, ध्यान दीजिए कि मूसा इस समझौते के बारे में क्या कहता है। मूसा फिरौन से कहता है कि कोई समझौता नहीं होगा। हम निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय और उसके 25 से 29 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, मूसा ने कहा, तुमको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं, इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहां ना पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने न दिया। तब फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुंह फिर न दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुंह दिखलाएगा उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा कि तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुंह को फिर कभी ना देखूंगा। मेरे मित्रों, यहां पर हम पाते हैं कि कोई समझौता नहीं होगा। इसी के साथ हमारा अध्याय 10 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 11 से जारी रखेंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसराइल की संतान को अपने मिस्री पड़ोसियों से सालों भर बिना मजदूरी के कठोर मेहनत की मजदूरी के रूप में जेवरात मांगने के लिए कहा। यदि इसराइल की संतान को जाने नहीं दिया गया तो मिस्र देश के पहलौठों की मृत्यु की चेतावनी दी गई। मिस्र में महान विलाप की भविष्यवाणी की गई यदि मिस्रियों ने इस विपत्ति को अपने ऊपर आने दिया। आगे हम टिप्पणी में पाते हैं, फिरौन के साथ विवाद के खंड का यह अंतिम अध्याय है। इसराइल का गुलामी के जुए से मुक्त होने के पूर्व मिस्र पर पहलौठों की मृत्यु न्याय की अंतिम क्रिया है। इस समय तक फिरौन को यह सीख लेना चाहिए था कि परमेश्वर के साथ युद्ध करना व्यर्थ है। परमेश्वर सहनशील और क्षमाशील रहा है, परंतु उसे फिरौन को समझना चाहिए अर्थात समझाना ही होगा कि यह इसराइल के लिए मिस्र से जाने का समय है। परमेश्वर के साथ इस युद्ध में मिस्र के सब लोग फिरौन का पक्ष लेने के लिए प्रवृत्त थे और इसीलिए उन्हें सबक सिखाने की उसकी कोशिश में परमेश्वर को एक अंतिम विपत्ति भेजनी ही थी। हम आगे पाते हैं, इसराइलियों ने मिस्रियों से गहने मांगे। इस परिच्छेद में मांगना शब्द का अर्थ केवल पहले की मजदूरी इकट्ठा करना है। इसराइलियों ने गुलाम के रूप में सालों भर उनकी सेवा की और उनकी मेहनत की कोई भी मजदूरी नहीं मिली। अब वे अपना पैसा वापस पाने को थे। यथा शब्द उन्हें अपने पड़ोसियों के पास जाना था और उनसे अपने पहले की मजदूरी मांगनी थी। प्रभु परमेश्वर ने इसराइलियों के प्रति मिस्राइलियों की आंखों में दया भर दी और उनके हृदय को कोमल कर दिया। वे इसराइल की संतान को उनकी सच्ची मजदूरी देने के लिए हर्षित थे। आगे हम पाते हैं मिस्र के पहलौठों की मृत्यु की चेतावनी। मित्रों, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर मिस्र के पहलौठों की मृत्यु की चेतावनी देता है। हम निर्गमन की पुस्तक 11 अध्याय उसके 4-10 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र के देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे, वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे और सारे देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहां तक कि उसके समान न तो कभी हुआ और न होगा। पर इसराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इसराइलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आकर मुझे दंडवत करके यह कहेंगे कि अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। यह कहकर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया, सो उसने इसराइलियों को अपने देश से जाने न दिया। मित्रों, परमेश्वर उन मनुष्यों और पशुओं के पहलौठों को चेतावनी देता है जो मिस्र के देवताओं के थे। प्रभु परमेश्वर मिस्री देवताओं के प्रथम फलों का दावा करेगा। परमेश्वर यह दिखाने जा रहा है कि इसराइलियों की संतान और मिस्रियों में अंतर है। वह अंतर उस मौत के दूत में नहीं था जो गोशेन और मिस्र दोनों की भूमि से होकर गुजरा था। वह इस सच्चाई में भी नहीं था कि एक जाति यहूदी थी और एक गैर यहूदी। अंतर उस मेमने के लहू में था जिसे चौखट पर लगाया गया था। मित्रों, मेमने के लहू के द्वारा सुरक्षित किया गया प्रत्येक घर मृत्यु के दूत के द्वारा छुआ नहीं जाएगा। यही यहूदियों का सबसे पुराना धार्मिक छुट्टी भी है, अर्थात फसा का पर्व की शुरुआत। फसा प्रभु यीशु मसीह का पुराने नियम में पाया जाने वाला सबसे अच्छा व्याख्यान देने वाला सजीव चित्र में से यह एक है। मित्रों, यहां पर हम इस अध्ययन को समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा समय यहां पर समाप्त होता है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आप इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में आशीष को प्राप्त किए हैं। आने वाले समय तक आप इस वचन पर अवश्य विचार करते रहें और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि वे भी इसे सुनकर अपने जीवन को प्रभु के निकटता में ला सकें। प्रभु आप सबको अपनी आशीष दे।
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो हो,
उसका पाप रखना, वो भी तुम ही तो हो।